भागवत सार की श्रृंखला में चौथे स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा है। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिन्नाम तत्सुतौ कल्पवत्सर। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिन्नाम तत्सुतौ कल्पवत्सर। मैत्रेय उवाच प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः उपये मे भ्रमिन्नाम तत्सुतौ कल्पवत्सर। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा, प्रजापते है प्रजापति की दुहितरं पुत्री शिशुमारस्य शिशुमार की वै निश्चय ही ध्रुवः ध्रुव महाराज उपये में विवाह किया भ्रमिन भ्रमी नाम नामक तत्सुतौ उसके दो पुत्र कल्प कल्प वत्सरौ तथा वत्सर। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम भ्रमी था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि अपने पिता के सिंहासन पर पधारूढ़ होने तथा आत्म साक्षात्कार हेतु उनके वन चले जाने के बाद ही ध्रुव महाराज ने विवाह किया। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे, और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वे जल्दी से जल्दी अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह करें, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का विवाह क्यों नहीं किया? इसका उत्तर यही है कि महाराज उत्तानपाद राज ऋषि थे। यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सत्ता की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत उत्सुक थे। अतः ज्यों ही उनके पुत्र ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के योग्य हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की ही अवस्था में आत्म साक्षात्कार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग किया था, कर दिया था। ऐसे उदाहरण विरले ही हैं, जहां अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्म बोध पर अधिक बल दिया गया हो। महाराज उत्तानपाद यह भली भांति जानते थे कि अपने पुत्र ध्रुव महाराज का विवाह करना उतना महत्वपूर्ण न था जितना कि वन जाकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने, पर वे इसे प्राथमिकता देते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमोम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पर चर्चा से पहले प्रार्थनाएं सनातन गोस्वामी की दोहराएंगे।
सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायिन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मा प्रेम्णारित्कण्ठयोस्पुरा।
हरे कृष्ण। ध्रुव महाराज की कथा आगे बढ़ा रहे हैं मैत्री मुनि। अभी तक वो बता चुके हैं विदुर को कि कैसे ध्रुव वन में गए, क्यों गए वन में, क्योंकि उनके पिता ने उनकी जो सौतेली माता थी उनके प्रति गलत व्यवहार नहीं किया, या गलत व्यवहार जो वो कर रही थी उसको रोका नहीं। और फिर ध्रुव महाराज चले गए वन में, नारद मुनि से मिले, नारद मुनि ने उन्हें मधुवन जाने की प्रेरणा दी और मंत्र प्रदान किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर ध्रुव महाराज तपस्या करने लगे, भगवान को प्राप्त किया कड़ी तपस्या के द्वारा, और फिर वे वापस अपने घर आए। घर आए तो बहुत स्वागत हुआ उनका दोनों माताओं ने, सुनीति और सुरुचि दोनों ने बहुत उनको स्वागत किया, पिता ने स्वागत किया। और फिर ध्रुव महाराज वहाँ रहने लगे। और कुछ समय बाद जब ध्रुव महाराज योग्य हो गए आसन संभालने के लिए, तो उस समय उनको आसन देकर, सिंहासन देकर महाराज उत्तानपाद ये वन में आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए। तो अब यहाँ आगे का वर्णन है कि उसके बाद तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने विवाह किया भ्रमी नाम की कन्या से, जो शिशुमार नाम के प्रजापति उनकी पुत्री हैं। वैसे उन्होंने और एक विवाह किया वायु की पुत्री से जिसका नाम था ईला, तो उनसे भी उनको पुत्र हुए, इनसे भी दो पुत्र हुए कल्पवत्सरो। तो ऐसे इन दो पुत्रों को उत्पन्न किया। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बात को कह रहे हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है, उत्तानपाद रुके नहीं अपने पुत्र के विवाह के लिए। दूसरे पुत्र का विवाह नहीं हुआ था, वो छोटा था, उत्तम जो है वो उनका विवाह नहीं हुआ था, लेकिन ध्रुव महाराज का तो विवाह होना था, तो दोनों का विवाह नहीं हुआ था। दो पुत्र थे, दोनों का विवाह नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी महाराज उत्तानपाद राज्य को छोड़कर आत्म साक्षात्कार के लिए चले गए। तो महत्वपूर्ण बात यहाँ चर्चा की ये है कि क्या व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को त्यागना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, या कर्तव्यों को करते रहना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनका कर्तव्य था, एक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने संतानों का विवाह कराएं, लेकिन वो ऐसे ही चले गए, छोड़ दिया, तो क्या कारण था? और प्रभुपाद सुंदर कारण देते हैं तात्पर्य में कि एक ही कारण कि उन्होंने गृह त्याग किया, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है ये हर कर्तव्य से बड़ी है। आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया किसी कर्तव्य के लिए, किसी हमारे नियमित कार्य के लिए, निर्धारित कार्य के लिए रुक नहीं सकती। जैसे जब श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, प्रचार होना है। प्रभुपाद ने कहा अभी तो देश स्वतंत्र नहीं है, अभी तो हम गुलाम हैं, पहले हमें देश को स्वतंत्र करना है, फिर हम जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करेंगे। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा नहीं, कृष्ण भावनामृत किसी के लिए रुक नहीं सकती। और प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि पहली बार उन्हें ये लगा कि वो परास्त हुए, क्योंकि अभय कभी परास्त नहीं हुए थे। उनके मित्रों में, उनके बाकी लोगों में, अन्य कई साधुओं से मिले थे, कभी परास्त नहीं हुए थे। अपने विवादों के द्वारा, अपने वादों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा सदैव वो उनको परास्त करते थे, लेकिन पहली बार प्रभुपाद को लगा कि हाँ ये बात सही है, कृष्ण भावनामृत किसी के लिए रुक नहीं सकती। तो यहीं पर इस बात को प्रभुपाद जोर दे रहे हैं कि जब हमें आत्म साक्षात्कार करना हो तो कोई कर्तव्य हमें रोक नहीं सकता। भगवद गीता में भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं नैव तस्य कृते नार्थो न कृतेनार्थ कश्चन। उस व्यक्ति के लिए जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर है, उसके लिए कोई कर्तव्य कृतेनार्थो, कृतेन यानी करने लायक कुछ नहीं है, कोई कार्य नहीं है। उसका एक ही कर्तव्य है, भगवान की भक्ति। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम जन्म लेते हैं, हमारे ऊपर कई ऋण होते हैं। माता पिता का ऋण होता है क्योंकि वो शरीर देते हैं, देवी देवताओं का ऋण होता है क्योंकि वे जीवन की उपयोगी वस्तुओं को देते हैं, ऋषि मुनियों का ऋण होता है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं, अन्य जीवों का ऋण होता है क्योंकि वे हम सबको कुछ सहयोग करते हैं जीवन जीने में, पितरों का ऋण होता है क्योंकि वो एक परंपरा देते हैं। तो इस तरह एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, बालक, वो इतने सारे ऋणों को लेकर जन्म लेता है। जन्म लेते ही उसके ऊपर इतने ऋण हो जाते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ये सारे ऋण बड़ी आसानी से चुकाए जा सकते हैं। वैसे तो ऋण चुका नहीं सकते, क्या ऋण चुकाएंगे आप अपने माता पिता का, क्या देंगे उनको? कुछ धन देकर ऋण चुका सकते हैं कि ठीक है आपने 9 महीने मुझे गर्भ में रखा, ये लो उसका कुछ पैसा। या पिता को कह सकते कि आपने बड़ा कष्ट लिया, धन कमाया, चिंताएं ली मुझे पालने पोसने के लिए, ये लो थोड़ा मैं कमा कर देता। क्या ऋण चुका सकते हैं माता पिता का, पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का? कुछ नहीं चुका सकते। इसीलिए शास्त्र कहता है देव ऋषि भूता तृणाम पितृणा न किं करो नायम ऋणी च राजन। वो व्यक्ति जो भगवान की शरण चल जाता है, गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम, वो व्यक्ति जो भगवान मुकुंद की शरण ले लेता है, उसके लिए कोई ऋण नहीं रह जाता। किसका ऋण? देव ऋषि भूतात्र निणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। वो व्यक्ति किंकर नहीं रह जाता, दास नहीं रह जाता, ऋणी नहीं रह जाता। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो अब पूर्ण रूप से भगवान जो सबकी आत्मा है उनकी शरण चला जाता है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, मुक्ति प्रदाता मुकुंद, तो भगवान मुक्त करते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मान एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो जो भगवान की शरण जाता है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जो भी कर्तव्य किए जाते हैं, जैसे लोग कई यज्ञ करते हैं, कोई अन्य पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, वे केवल हमारे शुद्धिकरण के लिए हैं। और जो व्यक्ति भक्ति में लगा है उसको शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं है, भक्ति का मार्ग ही उसे शुद्ध कर रहा है। उसको और कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है, कोई यज्ञ, कोई दान, कोई तपस्या, कोई आवश्यकता नहीं है। आराधितो यदि हरिं तपसा तत्किं, अगर भगवान की भक्ति हो रही है, हरि की भक्ति हो रही है, तपसा तत्किं, क्या आवश्यकता है तपस्या की? न आराधितो यदि हरिं तपसा तत्किं, और अगर भगवान की भक्ति नहीं हो रही तो ऐसी तपस्या का लाभ ही क्या है? तो इसीलिए हमें जानना चाहिए कि जो भी कर्तव्य हमारे हैं, जिनको कर्तव्य कहा जाता है, तो कैसे हैं वो कर्तव्य? वो कर्तव्य ऐसे हैं जिनसे हम कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दो तरह के कर्तव्य होते हैं, एक वो कर्तव्य जो किसी चीज को प्राप्त करके किया जाता है या प्राप्त करने की कामना से किया जाता है।
जैसे मान लीजिए माता पिता बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो बच्चे का कर्तव्य हो जाता है माता पिता की सेवा करना। तो ये क्या हुआ, माता पिता ने बच्चे की सेवा की, बच्चे को जन्म दिया, इसलिए बच्चे का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। ये एक कर्तव्य है, साधारण कर्तव्य, ऐसा कर्तव्य जो कुछ प्राप्त करने या किसी चीज को पाने के बाद किया जाता है। संतान ने माँ बाप से कुछ प्राप्त किया, अब उनका कर्तव्य है माँ बाप के लिए कुछ करना, या माँ बाप कुछ करते हैं इस आशा में कि बड़ा होकर जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारा ध्यान रखेगा। तो ये जितने भी कर्तव्य हैं, पारिवारिक कर्तव्य, सामाजिक कर्तव्य इत्यादि, ये कर्तव्य किसी न किसी चीज पर आधारित हैं, किसी संबंध पर, भौतिक संबंध पर आधारित हैं। हम अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमारा संबंध है उनसे, और है, शारीरिक संबंध है, हम उनसे जन्म लिया है हमने, इसीलिए शरीर का संबंध है। हम समाज की सेवा करना चाहते हैं, राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हमारा संबंध है, हमने इस समाज में, हमने इस राष्ट्र में जन्म लिया है और इसीलिए हमें इसकी सेवा करनी है। ये देहात्म बुद्धि है, देह के स्तर पर संबंधों को जानते हुए कर्तव्यों को करना। और दूसरे प्रकार के कर्तव्य होते हैं, ये प्रकार के जो कर्तव्य हैं जो देहात्म बुद्धि में हैं, ये केवल बंधन को बढ़ाते हैं। क्यों हम अपने ही माता पिता की सेवा करना चाहते हैं? दुनिया में हजारों ऐसे माता पिता हैं जिनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, क्यों नहीं हमारे हृदय उनके लिए द्रवित होता है? क्यों नहीं हम उसी प्रेम से, उसी भावना से उनके प्रति सेवा करते हैं? नहीं, अपने माता पिता, क्यों? देहात्म बुद्धि, देह से संबंधित हैं। तो ये पहले प्रकार का कर्तव्य है। लेकिन दूसरा कर्तव्य है जो प्रेम पर संबंधित है, प्रेम पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति आशा नहीं करता कि मैं इस व्यक्ति से प्रेम कर रहा हूं और ये बदले में मुझे कुछ दे। सच्चा प्रेम अहेतुकी अप्रतिहता, ऐसा प्रेम है जहां कोई हेतु नहीं है। जहां भी हेतु है, अगर उसे प्रेम कहा भी जा रहा है, वो प्रेम नहीं है, वो व्यापार है। हम किसी को प्रेम करें ताकि वो व्यक्ति हमसे प्रेम करे, ये व्यापार है। तो प्रेम भी व्यापार हो जाता है अगर उसमें आकांक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। लेकिन शुद्ध प्रेम, कोई इच्छा नहीं। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्म हताम करो तुवा, कुछ भी कीजिए आप मेरे साथ, मेरी इच्छाओं को पूरा मत कीजिए, मुझे दर्शन मत दीजिए, मुझे मर्माहत कीजिए, मुझे अपने पैरों के तले रौन दीजिए, आप मेरे स्वामी हैं। ये प्रेम है। हम में से कितने लोग अपने घर वालों को, अपने संबंधियों को, अपने मित्रों को ऐसा प्रेम कर सकते हैं कि वो मित्र, वो संबंधी, वो घर वाले हमारी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, हमें नीचा दिखा रहे हैं, हमारा जीवन में कष्ट ला रहे हैं, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं? नहीं। सच्चा प्रेम कृष्ण के प्रति होता और सच्चा कर्तव्य उस प्रेम पर आधारित होता है, वो प्रेम जिसका कोई हेतु नहीं है, और उस प्रेम के आधार पर, उस कर्तव्य के आधार पर सारे बाकी कर्तव्यों को त्यागा जा सकता है। और वही यहां पर महाराज उत्तानपाद ने किया। उन्होंने ऊंचे धर्म को, ऊंचे कर्तव्य को, प्रेम पर आधारित कर्तव्य को महत्व दिया। तो इसीलिए हम सब के कर्तव्य हो सकते हैं, जब दो कर्तव्यों में से हमें किसी एक कर्तव्य को चुनना हो, जैसे महाराज उत्तानपाद को चुनना था, एक कर्तव्य अपने संतान की विवाह कराना है, दूसरा कर्तव्य आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो इन दो कर्तव्यों में से जब हमारे सामने ऐसी कोई स्थिति आए जहां हमें दो कर्तव्यों को चुनना है, एक तरफ मान लीजिए कि कर्तव्य हो देह पर आधारित, समाज पर आधारित, और दूसरी ओर प्रेम पर आधारित, तो हमें ऊंचे कर्तव्य को चुनना चाहिए। प्रेम आधार होना चाहिए हमारे कर्तव्य का, हमारे चुनाव का। और कैसा प्रेम? वो प्रेम नहीं जिससे आशा है, आपस में परिवार में लोग प्रेम करते हैं इस आशा से कि हमें सुरक्षा मिलेगी, हमें कम से कम प्रेम मिलेगा ये भी आशा होती है, सच्चे प्रेम में ये भी आशा नहीं है। हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और कृष्ण हमसे प्रेम करेंगे ये भी आशा नहीं है, ये सच्चा प्रेम है। तो ऐसे प्रेम के चलते बाकी सारे कर्तव्यों को त्यागा जा सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करता है तो वो सर्वोच्च कर्तव्य को पालन कर रहा है और वो सबके लिए अच्छे कार्य को कर रहा है। अगर हम लोगों के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं जिसे लोग परोपकार कहते हैं, तो सच्चा परोपकार वो है कि हम गंभीरता से कृष्ण की भक्ति करें, समर्पित भाव से कृष्ण की भक्ति करें, और उस भक्ति के द्वारा हम दूसरों के लिए सबसे अच्छी चीज अर्थात इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करें। और यही कार्य करने के लिए महाराज उत्तानपाद जंगल में चले गए। ये कहने का तात्पर्य यह है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने अपने किसी कर्तव्य को त्यागा नहीं बल्कि एक ऊंचे कर्तव्य को स्वीकार किया, हमारे लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया कि हम सबको भी कृष्ण भक्ति, आत्म साक्षात्कार, प्रेम पर आधारित कर्तव्य को महत्व देना है। देह पर आधारित, भोग पर आधारित, इंद्रिय तृप्ति पर आधारित कर्तव्यों को में कोई महत्व नहीं देना है। तो ऐसे ध्रुव महाराज ने विवाह किए, उनकी संतान हुई। अब जो उनके छोटे भाई थे उत्तम, उनका विवाह नहीं हुआ था, वो एक समय हिमालय में चले गए शिकार खेलने के लिए। तो हिमालय में वो शिकार खेल रहे थे, ये वर्णन पहले चार श्लोकों में आता है इस अध्याय, ये छोटा सा अध्याय है 30 श्लोकों का, इसको दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जहां उत्तम शिकार खेलने जाते हैं और उनका वध हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, और 5वें श्लोक से लेकर अंतिम विभाग, अंतिम श्लोक तक जहां ध्रुव महाराज युद्ध करते हैं, जैसे इस अध्याय का शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। तो उत्तम चले गए हिमालय में शिकार करने, वहां पर यक्ष उपस्थित थे, यक्षों के साथ कोई बातचीत हो गई, कुछ झगड़ा हो गया और यक्षों ने मार डाला उत्तम को, और ये समाचार सुनकर वहां पर उनकी माता थी सुरुचि, वो भी मर गई, उनका भी देहांत हो गया। अब जब ध्रुव महाराज को ये पता चला कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है, तो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने ये सोचा कि अब मुझे यक्षों को मारना चाहिए। तो उन्होंने रथ तैयार किया क्रोध में और अपनी सेना तैयार की और चल दिए हिमालय की ओर यक्षों से युद्ध करने के लिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ध्रुव महाराज जो भगवान के दर्शन कर चुके हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनको क्रोध क्यों आया? उन्होंने ये बदले की भावना क्यों ली कि मेरे भाई को मारा है, अभी मैं भी जाकर मारूंगा? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये हम सबका भ्रम है कि
आत्म साक्षात्कार की ऊंची अवस्था में क्रोध नहीं होता, ये भ्रम है हमारा, क्रोध बना रहता है। शुद्ध भक्त भी क्रोध करते हैं और वे कहते हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि ध्रुव महाराज का अपने भाई की हत्या का बदला लेने जाना कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो राजा है और राजा का कर्तव्य है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उस अन्याय को वो खत्म करें, उस अन्याय को समाप्त करें, उस व्यक्ति को न्याय दिलाएं। तो क्योंकि उत्तम की अन्याय से, वो तो युद्ध करने नहीं गए थे, वो तो शिकार खेलने गए थे, लेकिन कुछ बातचीत में उन्होंने फिर कुछ ज्यादा होकर मार दिया, तो क्योंकि अन्याय हुआ इसीलिए राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए ध्रुव महाराज गए। और जहां तक क्रोध की बात है तो हम लोग भागवत में ही कई स्थानों पर देखते हैं कि कैसे कई जगहों पर बड़े बड़े आत्म साक्षात्कारी पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने क्रोध कर दिया। जैसे पहला उदाहरण मन में आता है, परीक्षित महाराज को जब श्राप मिला, ब्राह्मण पुत्र, उस समय के ब्राह्मण बड़े योग्य ब्राह्मण थे, अपनी इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को संयम में रखना, ये तो उनके लिए बहुत सरल बात थी, लेकिन उसने भी क्रोध कर दिया, परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, तो क्रोध हुआ। आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं कि कैसे जय और विजय को चार कुमार जो आत्म साक्षात्कारी थे, चार कुमारों ने क्रोध किया। प्रभुपाद लिखते हैं वहां उस तात्पर्यों में कि आत्म साक्षात्कार भक्ति की ऊंची स्थिति में भी क्रोध बना रहता है, तो वहां भी उन्होंने क्रोध किया। ऐसे कई उदाहरण हम लोग देख सकते हैं कि जहां बहुत सारे महान भक्तों ने क्रोध को प्रदर्शित किया, जैसे मांडव्य मुनि जो पूर्ण रूप से अपनी इंद्रियों को वश में रख सकते हैं, यमराज के ऊपर क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया यमराज को कि जाओ शूद्र हो जाओ, दासी पुत्र बनो, तो फिर वो विदुर के रूप में आए। तो मांडव्य ऋषि ने क्रोध किया, चार कुमारों ने क्रोध किया, और तो और हम लोग देखते हैं कि महान वैष्णव जैसे नारद मुनि ने भी क्रोध किया। नारद मुनि ने नलकूवर और मणिग्रीव को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, नारद मुनि ने यदुवंशियों को क्रोध में आकर श्राप दे दिया, नलकूवर मणिग्रीव को कहा जाओ पेड़ हो जाओ, क्यों, केवल वो उनके सामने ऐसे ही खड़े रहे निर्वस्त्र। और नारद मुनि इत्यादि महर्षि जो उपस्थित थे उन्होंने यदुवंशियों को श्राप दे दिया कि सारा तुम्हारा जो इस तुम ये जो पूछ रहे हो कि इसके गर्भ में संतान कौन है, पुत्र है या पुत्री, तो ये श्राप देता हूं कि इसके गर्भ से एक लोहे का टुकड़ा प्रकट होगा और सारे तुम्हारे वंश का नाश करेगा। और वही हुआ, तो यदुवंशियों का नाश। तो ऐसे हम लोग अन्य बहुत स्थानों पर देखते हैं कि कैसे क्रोध किया। जय विजय के प्रसंग में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं जय विजय को जब श्राप मिल गया कि तुम जाओ चिंता नहीं करो और क्रोध के द्वारा तुम मेरी भक्ति कर मुझे बहुत जल्दी फिर से प्राप्त करोगे। क्रोध के द्वारा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ने क्या किया, क्रोध किया भगवान, रावण ने क्रोध किया, शिशुपाल ने क्रोध किया, भगवान ने कहा क्रोध करके, क्रोध के द्वारा भक्ति करके तुम मुझे प्राप्त करोगे बहुत जल्दी। बड़े आश्चर्य की बात। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यहां प्रमाण है कि क्रोध के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है अगर व्यक्ति क्रोध करते हुए भगवान का स्मरण करे। क्रोध के द्वारा भी देखिए, अर्थात जगत में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसके द्वारा कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता, हमारे दुर्गुणों के द्वारा भी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्रोध
क्रोध एक दुर्गुण है, उसको गुण में बदलने का क्या तरीका है? भक्तों के जो द्वेषी हैं, द्वेषी भक्त जना, जो व्यक्ति भक्तों के प्रति द्वेष करते हैं उनके प्रति क्रोध करना, ये क्रोध को दुर्गुण से गुण में बदलने के समान है। तो अगर हम लोग क्रोध जैसे दुर्गुण को गुणों में बदलना चाहते हैं, गुण में, तो हमें भक्तों के प्रति जो द्वेष करते हैं, भक्तों के जो विरोधी हैं, उनके प्रति क्रोध करना चाहिए, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन अगर क्रोध नहीं करता तो युद्ध कैसे करता? युद्ध करने में क्रोध चाहिए। जैसे अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन को क्रोध आ गया, कुछ भी हो कल शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, तो क्रोध किया अर्जुन ने, लेकिन हम अर्जुन को शुद्ध भक्त कहते हैं। तो इसीलिए क्रोध का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि हम उसको भगवान और भगवान के जो भक्त हैं उनके विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल करें, उनके द्वेषियों के विरुद्ध इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा उपयोग है क्रोध का, ये दुर्गुण से गुण में, और ये बहुत अच्छा गुण है। अर्जुन का ये गुण हो गया, क्रोध करना अर्जुन का गुण हो गया, क्योंकि उसके द्वारा प्रसन्न किया भगवान को उसने। इसी तरह अगर हम क्रोध करें भगवान के विरोधियों के प्रति, भक्तों के विरोधियों के प्रति, भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भक्त कौन है? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह अग्नि से ठंड लगती है, व्यक्ति को भय होता है और अंधकार, जिस तरह अग्नि से ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अग्नि के पास चले जाइए, अपने हाथ सेक लीजिए। अगर आपको भय लग रहा है, अग्नि जला दीजिए, प्रकाश हो जाएगा, आपको भय नहीं लगेगा। और अंधकार है तो वह अंधकार भी मिट सकता है, किससे? केवल अग्नि जलाने से। तो भगवान कहते हैं उद्धव से, ये उद्धव गीत में उन्होंने कहा है, उद्धव को जो गीता उन्होंने पढ़ाई, तो भगवान उसको कहते हैं कि जिस तरह अग्नि से तीन चीज समाप्त होती हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जीवन में उदासीनता है, उत्साह नहीं है, जैसे उसकी तुलना ठंडी से की गई है, दूसरा भय है उसके जीवन में, और तीसरा अंधकार की तुलना अज्ञान से की गई, तो जैसे अग्नि से ठंड और भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, ऐसे ही मेरे भक्तों के संग में आने मात्र से, मेरे भक्तों की सेवा से, श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति के जो उदासीनता है जीवन में, जो बहुत अनुत्साही है, ऐसा भक्त, ऐसा व्यक्ति, और जो बहुत भयभीत है और जो अज्ञान में है, ये तीनों चीजें भक्तों की सेवा से दूर हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान। व्यक्ति भयभीत नहीं रहेगा अगर भक्तों की सेवा करेगा, अज्ञान में नहीं रहेगा अगर भक्तों की सेवा करेगा, और उदासीन नहीं होगा, दुखी नहीं होगा इस जगत में, क्योंकि भक्तों की वो सेवा करके सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। भगवान आगे उदाहरण देते हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति के लिए, एक सभी जीवों के लिए जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। हम सब जानते हैं अगर हमें भोजन नहीं मिले कितना समय जीवित रहेंगे, इसीलिए हम लोग भागवत क्लास के पहले ही प्रसाद दे देते हैं, कम से कम जीवित रहें भागवत क्लास में। लेकिन कभी कभी वो ज्यादा हो जाता है और आंखें बंद हो जाती हैं। तो भगवान कहते हैं कि सभी जीव जीवित हैं अन्न के द्वारा, जैसे अन्न के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जैसे उस व्यक्ति के लिए, मतलब भगवान कह रहे हैं कि वो जीव के लिए अन्न कितना महत्वपूर्ण है, प्राण है उसके, या फिर उस व्यक्ति के लिए जो इस जगत से बाहर जा रहा है, धर्म कितना आवश्यक है, नहीं तो जा नहीं सकता। सच्चे धर्म का पालन किए बिना व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता जगत के। तो जैसे प्राणियों के लिए जीवन बनाए रखने के लिए भोजन आवश्यक है, अन्न आवश्यक है, जैसे उस व्यक्ति के लिए जो इस जगत को पार करना चाहता है सच्चा धर्म आवश्यक है, कष्टों में पड़े हुए आर्त व्यक्तियों के लिए मेरी शरण आवश्यक है, वैसे ही हे उद्धव, इस जगत में जो लोग कष्ट पा रहे हैं, जो दुखी हैं, जो सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए भक्तों का संग आवश्यक है। अर्थात भक्तों का संग भगवान कहते हैं कि ये इतना आवश्यक है जैसे व्यक्ति के लिए जीने के लिए भोजन। तो ऐसे भक्तों को जिस भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसे भक्त जब क्रोध भी करते हैं तो वो हमारे लिए वरदान होता है। जैसे नलकुवर और मणिग्रीव को नारद मुनि ने क्रोध किया, ये वरदान हुआ। और बहुत महत्वपूर्ण बात अपने क्रोध से वो सिखलाते हैं, जैसे यदुवंशियों को क्रोध किया ये सिखलाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति भक्तों का अपमान करेगा तो उसका नाश होगा। यदुवंशियों ने अहंकार में आकर, अपने बल के, अपनी स्थिति के अहंकार में आकर नारद मुनि इत्यादि उपस्थित ऋषियों का अपमान कर दिया। एक पुरुष को एक स्त्री बना दिया, उसको कुछ यहां पर कपड़ा रख दिया पेट में, कह दिया ये गर्भवती स्त्री है, बताइए इसके पुत्र होगा या पुत्री। हंसी करना चाहते थे, मान लीजिए ऋषि कहते पुत्री तो भी हंसते, पुत्र तो भी हंसते कि क्या ज्ञान है आपका। तो ऐसा अपमान किसी को नहीं करना चाहिए भक्तों का, ये चेतावनी देने के लिए, चाहे वो यदुवंशी ही क्यों ना हो। यदुवंशी अर्थात भगवान के पार्षद, भगवान से संबंधित इतने महत्वपूर्ण पद पर होते हुए भी अगर कोई भक्तों का अपमान करता है, क्षमा नहीं मिल सकती। इसीलिए क्रोध भक्तों के द्वेषियों के प्रति इस्तेमाल करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज बड़े क्रोध में आ गए, चले गए युद्ध करने। वहां जाकर उन्होंने शंख बजाया, सारे जो यक्ष थे घबरा गए, लेकिन फिर भी युद्ध करने आए। ध्रुव महाराज ने बड़ा तीव्र युद्ध किया, एक एक सैनिक को तीन तीन बाण वो मार रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति हुई कि यक्ष हारने लगे, तो उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से फिर ध्रुव महाराज पर आक्रमण किया। और ध्रुव महाराज तीन तीन बाण मार रहे थे, तो इनका एक एक सैनिक छह छह बाण मार रहा था ध्रुव महाराज को। वैसी बड़ी तीव्र युद्ध हो रहा था। और ऐसा हुआ कि इस युद्ध में अचानक उन्होंने उनको इतने बाण फेंके कि पूरे ढक गए ध्रुव महाराज। देवता जो थे वो चिंता करने लगे, हाय हाय ध्रुव का क्या हुआ, ये तो ध्रुव मर जाएगा, मर गया शायद। इतने सारे अस्त्र शस्त्र फेंके उनके ऊपर कि वो पूर्ण रूप से ढक गए। उपमा दी गई है कि जैसे पर्वत की चोटी, जब बड़ी तेज बारिश होती है तो पर्वत की चोटी दिखाई नहीं देती, ढक जाती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये जो उदाहरण दिया गया है बड़ा अच्छा है, कि जैसे पर्वत की चोटी पर बड़ी तेज बारिश होती है और उस बारिश से सारी गंदगी धुल जाती है, इसी तरह अब ध्रुव महाराज के ऊपर इतनी सारी वर्षा हो गई है, लेकिन ध्रुव महाराज अभी फिर प्रकट हो जाएंगे। वैसे हम सब के लिए भी सीखने लायक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे पर्वत की चोटी ढक जाती है वर्षा से, लेकिन उसी वर्षा से पर्वत की चोटी साफ हो जाती है, ऐसे ही हमारी चेतना आवृत है, ढकी हुई है भौतिक इच्छाओं से, भौतिक भोगों से, अज्ञान से, लेकिन उसी भौतिक अज्ञान को, उसी शरीर को हमें इस्तेमाल करना है, उपयोग में लाना है अपने आप को शुद्ध करने के लिए। जैसे पर्वत की चोटी वही वर्षा के जल को उपयोग करती है अपने आप को साफ करने के लिए। तो शरीर को माध्यम बनाना है, शरीर को स्व नहीं मानना है, लेकिन शरीर को माध्यम बनाना है,
श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो ध्रुव महाराज ढक गए और फिर वो बाहर आए, जैसे सूर्य, जब सूर्य ढक जाता है बादलों से लेकिन फिर सूर्य बाहर आ जाता है। सूर्य को कोई ढक नहीं सकता, ये तो केवल हमारी आंखों में उपर्दा हो जाता है। तो फिर से वो आए, युद्ध करने लगे और अब बड़ी तीव्रता से उन्होंने युद्ध किया और उन्होंने बहुत सारे यक्षों को मार दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी के पांव काट दिए, सब भागने लगे, तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे सारे यक्ष। और फिर सब भाग गए और उस समय उन्होंने सोचा कि अब मुझे अलकापुरी, जो यक्षों की नगरी है, उसमें प्रवेश करना चाहिए। लेकिन ये सोच ही रहे थे ध्रुव महाराज, तभी उन्हें मन में आया कि ये जो यक्ष हैं ये बड़े मायावी युद्ध करते हैं, ये इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं, ऐसे कैसे इतनी जल्दी बस भाग गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि यक्षों ने मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। अचानक अंधकार हो गया आकाश में और फिर ऊपर से सारी गंदगी, खून, हड्डियां और साथ साथ बहुत सारे अस्त्र शस्त्र ऊपर से गिरने लगे। पर्वत आ गए, पर्वतों की चोटियों से बहुत कुछ गिरने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो सारे हिंसक प्राणी भाग रहे हैं ध्रुव महाराज को मारने के लिए। हाथी दिखाई दिए, शेर दिखाई दिए और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र गिर रहे हैं, ये माया उन्होंने प्रकट कर दी। और ध्रुव महाराज थोड़े समय के लिए भ्रमित हो गए कि अरे ये क्या हुआ, ये क्या, ये सब क्या हो रहा है, चारों तरफ अंधकार, पर्वत, ये ऊपर से बहुत कुछ गिर रहा है। और उस समय जो वहां के ऋषि मुनि थे, वहां उपस्थित थे, वे आए ध्रुव महाराज के पास और उन्होंने ध्रुव महाराज से कहा, आप चिंता नहीं कीजिए, भगवान सबकी रक्षा करते हैं। अरे भगवान का नाम ही केवल काफी है, भगवान का नाम लेने से जीवों के कई पाप कट जाते हैं, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। दरअसल जो ऋषि मुनि थे वो याद दिला रहे थे ध्रुव महाराज को कि आपके पास नारायण अस्त्र है, अब आप उसका उपयोग कीजिए, नारायण का स्मरण कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ये सारी जो माया है ये केवल भगवान के नाम से ही समाप्त हो सकती है। कितनी सुंदर बात ऋषि मुनियों ने कही कि ये जो माया रची गई है ये सत्य नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र आ नहीं रहे हैं, कोई हाथी कोई शेर आ नहीं रहे हैं, ये माया रची गई है और केवल भगवान के नाम से इसको मारा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यही हमारे लिए उपदेश है ऋषि मुनियों का कि हम भी एक माया के जगत में हैं, चारों तरफ माया है और इसको केवल भगवान के नाम के द्वारा समाप्त किया जा सकता है।